Krishna, Hare Krishna. Shri Govinda Dham ki jai. Govinda Dham ke bhakton ki jai. Pravachan Hindi mana na? Hindi? हरे कृष्णा. एक साल के बाद आप सबके बीच में आने का अवसर मिल रहा है. मेरे लिए हर बार की तरह बहुत ही प्रसन्नता की बात है और आप सबको यहाँ देखकर हफ्ते के बीच में भी अच्छा लग रहा है. आशा करते हैं कि आप इसी तरह से सारे सत्संग के कार्यक्रम के लिए यहाँ आते रह रहे होंगे और अपनी भक्ति में आप अच्छी तरह से प्रगति कर रहे होंगे. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, Haribol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Stotra Sata. His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Shri Radha Vijay Govinda Dev Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Shalakaya Chakshuron Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Lamghayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गोपति प्रभु ने मुझसे कहा कि आप इस विषय पे प्रवचन दीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति हम कैसे समर्पित हो सकते हैं। आप सब तो समर्पित है ही, फिर भी भक्तों का गुण होता है कि किसी चीज को जानने के बाद भी वो फिर से सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि सुनना अच्छा लगता है, भक्तों का स्वभाव ही होता है। तो आप सब समर्पित भक्तों के बीच में आके इस विषय पे दो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है, तो आशा करता हूं कि मेरा भी समर्पण भाव कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम कृष्ण कथा कर रहे होते हैं तो सबसे प्रमुख लक्ष्य हमारे मन में होता है वो स्वयं का। किसी को कृष्ण कथा कहते हैं, कोई उपदेश देते हैं, सबसे अधिक लाभ स्वयं हमारा होता है। तो जब ये आंदोलन की बात आती है, आंदोलन के शब्द से कहने से ही मन में कुछ विचार आने लगता है, एक चित्र बैठता है। कैसा चित्र? तलवारों वाला, बंदूकों वाला, तोपों वाला, गोलियों वाला, तो तरह तरह के ऐसे चित्र मन में आते हैं। ये प्रभुपाद जी का आंदोलन है, ये हरे कृष्ण आंदोलन है, कहीं हमें भी ऐसे नहीं कहा जाएगा ना कि भाई बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ। हाँ, तलवार उठानी पड़ेगी, लेकिन ज्ञानासीना, ज्ञान की तलवार, हरि नाम की तलवार उठानी पड़ेगी। हरि नाम के तलवार से हृदय के अंदर जो हमारे असुर और राक्षस बैठे हैं उनका वध होगा। हमें इस युग में लोगों के शरीर का वध करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमारे भीतर जो एक राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, उसको नष्ट हमें करना है, और हमारा आंदोलन इसके लिए है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक है, तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नारद मुनि उपदेश देते हैं कि हमें चाहिए कि हमें क्रांति करें, विप्लव। विप्लव अर्थात क्रांति। तो किस बात की क्रांति? तद वाक विसर्ग, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विषय होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली क्रांति। जब हम भगवान की वाणी दोहराते हैं तो लोगों के हृदय के अंदर जो ये असुर बैठे हुए होते हैं, जो असुरी प्रवृत्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। यद्यपि हमारे बोलने में कृष्ण कथा कहीं कुछ व्याकरण की गलती हो, कहीं कुछ और बोलने के पद्धति में कोई कमी हो, या यदि हम कृष्ण कथा लिख रहे हैं वहां कोई गलती हो जाए, शब्दों का सही प्रयोग न हो जाए, ऐसे कोई छोटी मोटी चूक हो भी जाए, फिर भी यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि, यहां जो श्लोकों की रचना की गई है भगवान के गुणगान के लिए, अबद्धवती, यदि उसमें कोई थोड़ी गलती भी हो, थोड़ा दोष भी हो, अपि हालांकि ऐसे दोष हैं, क्योंकि नामानि अनंतस्य यशः अंकितानि यत्, क्योंकि अनंत भगवान श्री कृष्ण के नामों का, उनके यश का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके भक्तों का, उनके धाम का इत्यादि अंकितानि वर्णन हो रहा है, इसलिए हालांकि ऐसे कथाओं में, ऐसे रचनाओं में, ऐसे प्रवचनों में थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाएं, दर्शन की नहीं, तत्व की नहीं, परंतु व्याकरण की, भाषा की, शब्दों की, तो फिर भी शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, साधवः जो साधु लोग होते हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक तत्वों को जानते हैं, जो आध्यात्मिक साक्षात्कारी पुरुष हैं, ऐसे लोग इन रचनाओं को, इन कथाओं को अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। एक बार मैं किसी दूसरे शहर में था, तो एक जिस घर में मैं था कथा के लिए, तो वहां भी एक महिला आई थी, और वैसे कथा नहीं थी, केवल वहां प्रसाद के लिए मैं गया था, तो उस समय वो महिला भी उनकी जान पहचान वाली थी, तो वो भी आ गई। वो एक बहुत बड़े परिवार से थी, बहुत ही धनी परिवार, बहुत बड़े उद्योगपतियों के परिवार से थी, और एक बहुत ही कुलीन और सुसंस्कृत परिवार उनका था। तो प्रसाद लेने के बाद जब हम बैठे थे, परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो ये जो महिला थी, जो अतिथि थी वहां उनके घर में, तो कहने लगी कि आपके हरे कृष्ण संस्था में हमने देखा है कि आपके अनेक प्रवक्ता होते हैं, कभी कभी टीवी पर भी देखती हूँ, कभी कभी यहाँ वहां उनकी बातें सुनती हूँ, लेकिन आपकी जो भाषा है ना, वो सही नहीं है। आपके भक्त जब बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं, तो शुद्ध हिंदी नहीं होती, वो बंबई वाली हिंदी बोल देते हैं, या जब भी आप संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हो तो उच्चारण ठीक नहीं होता। तो आप जब बोल रहे होते, आपके संस्था के भक्तों को सही उच्चारण करना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से वो बात कर रही थी, तो हमने कहा कि हाँ, आप जो कह रही हैं वो सही बात है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसकी भाषा सही होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, परंतु ऐसा है कि सभी लोग हनुमान जैसे नहीं हो सकते। हनुमान की भाषा वैसे हुआ करती थी। जब पहली बार श्री राम और श्री लक्ष्मण ने हनुमान को देखा तो हनुमान के रूप में नहीं थे, वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, क्योंकि सुग्रीव, हनुमान और उनके साथी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे और वाली के डर से हमेशा सुग्रीव चिंतित रहते थे। जब भी कोई नया व्यक्ति, अजनबी कोई आ जाता था वन में, तो सुग्रीव बड़े चिंतित हो जाते थे। तो इस बार राम और लक्ष्मण को देखा, परंतु पहचानते नहीं थे कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है। ये दिखने में क्षत्रिय जैसे दिखते थे, परंतु पोशाक, उन्होंने वेश पहना था ऋषियों का, जटाधारी थे। तो तुरंत सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि हनुमान जाओ देखो ये कौन है, जांच करके आओ। तो हनुमान जी वहां तत्क्षण पहुंच गए और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, श्री राम को लगा कि मैं सुनते रहूं इनकी बात, कितनी मधुर वाणी इनकी है। और जिस तरह से वो शब्दों को चुनते हैं, बिल्कुल उस चीज को कहने के लिए सही शब्द है। और इनकी बोली से, इनकी भाषा से ये समझ में आता है कि बहुत बड़े विद्वान है ये। तो खूब प्रशंसा करने लगे श्री राम लक्ष्मण को। जब हनुमान सामने थे, बोल रहे थे, हनुमान के बोलने के बाद श्री राम लक्ष्मण के कानों में बोल रहे थे, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, इसकी भाषा कितनी मधुर और सही है। आखिर हनुमान जी तो किन के शिष्य थे? सूर्यदेव के शिष्य थे, और सूर्यदेव विवस्वान, ये तो बहुत बड़े विद्वान है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है ना, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। तो उन्होंने कहा कि मैंने सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। तो जब स्वयं श्री कृष्ण ने उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो तो कितने बड़े विद्वान होंगे। और सूर्यदेव हनुमान के गुरु थे, तो हनुमान जी ने सारे वेदों का पठन सूर्यदेव के सामने कर लिया। जैसे जैसे सूर्योदय होता था तो वो कूद पड़ते थे, और जैसे जब तक सूर्योदय, सूर्यास्त नहीं होता था, तब तक वो सूर्यदेव के रथ के साथ चलते थे, और वेदों का पठन वैसे उन्होंने सीख लिया। हम सब तो हनुमान ने, तो मैं उस वो माता जी से कह रहा था, सब लोग तो हनुमान जैसे नहीं हो सकते ना। तो आपका कहना सही है, फिर भी आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। जो भी वो प्रवचन दे रहे हैं या जो कुछ लेख उन्होंने लिखा होगा, किसी कविता की रचना की होगी, तो विषय क्या है? विषय है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति। तो फिर मैंने इस श्लोक का उच्चारण किया जो अभी मैंने आपको सुनाया। मैंने कहा कि देखिए श्रीमद् भागवत में नारद जी ऐसे कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि यदि कोई दोष उनके उच्चारण में हो भी, उनकी भाषा में हो भी, फिर भी शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। जो साधु लोग होते हैं, जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, उन कथाओं को सुनते हैं, उनको दोहराते हैं और उनको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि नामाने अनंतस्य, अनंत श्री कृष्ण भगवान के संबंध में उनके नामों का उच्चारण उसमें हो रहा है। यशः अंकितानि, उनका यश आदि का गुणगान हो रहा है, क्योंकि विषय श्री कृष्ण है। बोलने वाला भी हृदय से शुद्ध है, वो कुछ चाहता नहीं है इस कथा से कि मुझे धन की प्राप्ति हो। वो अपनी जीविका के लिए नहीं कर रहे हैं ऐसी कथा। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब भगवान के भक्ति की कथा हो रही होती है तो जो कथाकार होता है, जो प्रवक्ता होता है, उसे स्वार्थ के लिए ये कथा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो स्थूल स्वार्थ हो या सूक्ष्म स्वार्थ हो। स्थूल स्वार्थ का मतलब है कि हमें कुछ धन चाहिए, फिर लोग आके मुझे दक्षिणा देंगे तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कथाकार की। सूक्ष्म स्वार्थ क्या है कि मुझे बहुत प्रसिद्धि चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी वाहवाह करेंगे कि कितना बड़ा विद्वान है, कितना अच्छा प्रवक्ता है। तो ये सूक्ष्म स्वार्थ है। तो न स्थूल स्वार्थ होना चाहिए न सूक्ष्म स्वार्थ होना चाहिए। तो मैंने वो माता जी से कहा कि देखिए, यहां हमारे संस्था के जो भक्त हैं, भले वो इतनी अच्छी भाषा से कभी कभी न भी बोलते हों, कई लोग बोल लेते हैं, हो सकता है कई लोग नहीं बोलते हों, आप जैसे कहते हो बंबई हिंदी में बोलते हो, लेकिन विषय तो शुद्ध है ना, कोई उसमें मिलावट करके तो नहीं बोलते हैं। जो सत्य है, जो भगवत गीता का कथन है, उसी को तो दोहराते हैं, कोई उल्टी बात कोई गलत बात नहीं सिखाते हैं। और फिर उनका हृदय साफ है, कोई स्वार्थ नहीं है कथा देते समय। जो सही गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने ग्रहण किया है, जो सीखा है सुना है पढ़ा है, उसी को तो दोहरा रहे हैं। तो जब वो सही उपदेश दे रहे हैं कृष्ण के बारे में और साफ हृदय से दे रहे हैं, तो थोड़ी गलतियां यहां वहां हो भी जाती हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर वो माता जी ने बात स्वीकार कर ली, क्योंकि बात है ही ऐसे, श्रीमद् भागवत की ही बात है। तो इसी तरह से हमारे आंदोलन में यही मुख्य कार्य है। हमारा कार्यक्रम क्या है, कृष्ण कथा सुनो, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में कहो, कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करो, उतारो, अपनाओ और बस सुखी रहो। यही हमारा आंदोलन है अपने जीवन में, और अन्यों को भी इसी रास्ते में लाने का प्रयास हम करते हैं। बस यही है हमारा आंदोलन, कोई तलवार वलवार की बात नहीं है, ना ही संन्यास की बात है। ये और बड़े डर की बात है सबके लिए। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर से जुड़ता है, उसके बहुत सारे रिश्तेदार सब आते हैं घबरा के कि ये सन्यासी हो जाएगा, परिवार को छोड़ के चले जाएगा, पत्नी को छोड़ देगा या पत्नी पति को छोड़ देगी, बच्चों को छोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा आंदोलन, प्रभुपाद जी का आंदोलन, श्री कृष्ण का आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, ये सबके लिए है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत में गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो कूर्म स्थान में आए, जहाँ की एक प्रसिद्ध कूर्म देव का मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं, कूर्म देव भगवान कृष्ण के एक अवतार है। तो उस स्थान में महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा, दर्शन किया उन्होंने, और वहां पे एक बहुत ही श्रद्धालु ब्राह्मण उनको मिले। उनका भी नाम था कूर्म विप्र, कूर्म ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के संग से बहुत प्रभावित हुए, वो महाप्रभु के साथ में ही रहना चाहते थे। महाप्रभु थोड़े दिनों तक रहे कूर्म क्षेत्र में, और वहां पे उन्होंने दर्शन किया, खूब कीर्तन किया, नृत्य किया भगवान के सामने, और फिर कूर्म स्थान कूर्म क्षेत्र छोड़ के और दक्षिण में जाने का समय आ गया। तो जब ऐसे समय आया तो कूर्म ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक निवेदन रखा उनके सामने कि आपके संग को प्राप्त करके अब मैं आपके विरह आपके बिना नहीं रह सकता, तो मैं आपके साथ चलूंगा। जहां भी आप भ्रमण करेंगे, जिस अवस्था में भी आप रहेंगे, मैं आपके साथ जाने के लिए और रहने के लिए तैयार हूं, तो कृपया मुझे आपके साथ आने का एक अवसर दीजिए। तो महाप्रभु तो जानते थे कि ये भक्त, ये ब्राह्मण गृहस्थ है, उसके गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं। तो महाप्रभु ने फिर उनको मना किया और मना करके उन्होंने उनको आदेश दिया, और जो आदेश दिया ये श्लोक जो है मुख्य श्लोक बहुत आसान है, बहुत प्रसिद्ध भी है श्लोक और बहुत महत्वपूर्ण भी है। मेरा अनुमान यह है कि आप में से अधिकांश भक्तों ने ये श्लोक को पढ़ा होगा, शायद अनेकों को कंठस्थ भी होगा। आप में से कितने भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ है पहले से, आप हाथ ऊपर कीजिए। अरे बहुत कम, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हम सोच रहे थे कि आप सब सोचेंगे ये तो हमें पता है, तो चलो पता नहीं तो अच्छी बात है, अब पता हो जाएगा। तो इस श्लोक का उच्चारण चलिए हम करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के सातवें अध्याय से है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञाय गुरु होना तारो देश। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञाय गुरु होना तारो देश। इसके पहले भगवान से कहते हैं पिछले श्लोक में, प्रभु कहे जब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तो प्रभु ने कहा, प्रभु कहे ऐछे बात कभू ना कहिबा, गृह रहे कृष्ण नाम निरंतर लइबा। उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण ऐसी बात कभी आगे नहीं कहना, गृह रही घर में रह के कृष्ण नाम निरंतर लइबा, तुम मेरे साथ आके अपने परिवार को छोड़ के मत आना, मेरे साथ परिवार की जिम्मेदारी तुम संभालो। और परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते तुम निरंतर कृष्ण नाम लेते रहो, ये मेरा आदेश तुम्हारे लिए है। और फिर उसके बाद वाले श्लोक में, इस श्लोक के बाद वाले श्लोक में कहते हैं, कभू ना बाधि भे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि ए ठानी पावे मोर संग। और इस तरह से तुम यदि निरंतर कृष्ण नाम लेते रहोगे अपने गृहस्थ जीवन में, तो माया में कभी नहीं पड़ोगे, माया का प्रदूषण तुम्हारे हृदय में कभी नहीं होगा, तुम पवित्र अवस्था में सदा रहोगे। और पुनरपि मैं इस स्थान में तुम्हें देखूंगा, तुम्हें मिलूंगा मैं। तो ऐसे सांत्वना भी थी, क्योंकि वो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आसक्ति हो गई थी उनकी इन थोड़े दिनों में ही, और उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि नहीं, आपको पारिवारिक जो दायित्व है उसका पालन करना चाहिए, परंतु कृष्ण नाम लेते रहो और कृष्ण नाम सबको देते रहो। तो यहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना चाहिए, किंतु यह हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है, हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करे। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है और भगवद गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है तो और भी अच्छा। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं और ये अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसलिए वे सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्यकलापों में ही निमग्न रहने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे जैसे पाप कर्मों से भी बचना चाहिए। इन चारों में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। लेकिन जो सन्यासी बनते उनको नहीं, जो सन्यासी नहीं बनेंगे उनके लिए। तो खैर, वो कहते हैं कि पारिवारिक जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे आप हैं वहीं रहिए। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी बने रहिए, हमेशा के लिए नहीं, पास भी होना है, आगे भी चलना है। गृहिणी हैं तो गृहिणी रहिए, व्यापारी हैं व्यवसाय करते हैं व्यवसाय करते रहिए, नौकरी करते हैं करते रहिए, जब तक कि समय नहीं आता नौकरी छोड़ने के लिए। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त्य एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायसो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति ये निराकार ब्रह्म में लीन होने की बात अपने मन से निकाल देता है, वो भगवान नहीं बनना चाहता। ऐसे भगवान बनने की बातें मन से निकाल देता है, जीवंती और जीता है, कैसे जीता है, सन्मुखरिताम संतों के मुख से, क्या सुनता है संतों के मुख से, भवदीय वार्ताम आपकी वार्ता, आपकी कथा, आपके संदेश, आपके नाम सुनता है जो व्यक्ति, स्थाने स्थिता अपने स्थान में स्थित होकर, चाहे वो गृहस्थ हो तो गृहस्थ में स्थित रहे, कोई बात नहीं। श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर, वो ऐसे कथाओं को सुनता है और अपने तन से, अपने शरीर से, वाक अपने वाणी से, मन अपने मन से आपकी सेवा में लगा रहता है, आपके कथाओं को आपके उपदेशों को ग्रहण करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो फिर क्या होता है, वो आपको भी जीत लेता है। ऐसे प्रयास से आपका नाम है कृष्ण अजीत है। अजीत का मतलब है कि जिसको कोई जीत नहीं सकता। परंतु जो श्रद्धालु भक्त इस तरह से नियमित रूप से संतों के मुख से श्री आपकी कथा सुनता है, आपके नामों को सुनता है, तो वो आपको भी जीत सकता है, यद्यपि आपका नाम अजित है। तो कितना सुंदर श्लोक है। तो इसमें ब्रह्मा जी इस बात का आश्वासन हम सबको दिलाते हैं कि यदि हम केवल इसी तरह से भक्तों के बीच में आके कृष्ण कथा करें, कृष्ण कथा सुने, कृष्ण नाम संकीर्तन करें, जप करें, तो हम कृष्ण को भी जीत सकते हैं। हमारा उद्देश्य कृष्ण को जीतने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है कृष्ण के नित्य सेवा करना। परंतु कैसे जीतते हैं, प्रेम से जीत लेते हैं। इस तरह का हमारी प्रेम की गुणवत्ता होती है कि कृष्ण हमारे फिर इतने ऋणी हो जाते हैं कि कृष्ण कहते हैं मैं इस भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो दूसरे शब्दों में अपने ही स्थान में रह के जब हम इस तरह से सेवा करते हैं और जगह जगह कृष्ण कथा फैलाने भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम आके यहाँ बैठेंगे और सुनेंगे घर चले जाएंगे, नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ उस कूर्म ब्राह्मण को क्या उपदेश दिया, अब तुमने बहुत कृष्ण नाम सुना है और लिया है और लेते रहना, सुनते रहना, परंतु सुनाने में भी भूलना नहीं, सुनाना भी चाहिए दूसरों को जाके। जारे देखो जिन्हें तुम मिलोगे, तारे कहो उससे कहो, क्या कहो, कृष्ण उपदेश। तो इसको कहते हैं प्रचार, लेकिन इसके पहले होना चाहिए विचार। संग जब होगा तो संग के आधार पर सही विचार होगा, विचार के आधार पर सही आचार होगा, आचार के आधार पर सही प्रचार होगा। तो कृष्ण उपदेश का प्रचार हमें करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जिन्हें भी हम मिले, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, जिनसे हमारा संबंध हमारे व्यापार में होता है, जो हमारे दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, सड़क में हम जिन लोगों को मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, जिसके पास भी हम जाएं, उनको मिलना चाहिए, उनको उपदेश देना चाहिए। एक बार एक भक्त था, वो एक गांव का भक्त था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, आठवीं या नौवीं तक पढ़ा था, परंतु उसके हृदय में उसने ये स्वीकार कर लिया था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हरेक को जाके मुझे कृष्ण उपदेश देना चाहिए। तो थोड़ा मासूम था वो, जब घूम रहा था तो एक बड़ा बंगला जैसा देखा, वो वास्तव में सर्किट हाउस था। सर्किट हाउस जानते हैं, अलग स्थान में सर्किट हाउस होता है, जब बड़े कोई मंत्री वगैरह उस शहर में आते हैं, सरकारी अधिकारी व्यक्ति वो जब आते हैं तो उस स्थान में रुकते हैं। तो ये बेचारा मासूम था, प्रचार के भगवत गीता साथ में लेके जा रहा था कि मैं सबको बांटूंगा, सीधा चलता गया, बड़े सब पुलिस पुलिस संतरीवंत सब थे, जिस तरह से वो चल रहा था तो सोचा कि कोई बड़ा आदमी होगा, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के नहीं गया कि मैं जाऊं, तो रोक दिया होता उसको, फिर गया हाथ ऐसे करके सीना तान के किताब हाथ में लेके गया अंदर। उन्होंने सोचा कि ये कोई बड़ा आदमी है, उसको जाने दिया। अंदर गया, वहां ये लोग उनके सहायक बैठे थे, बहुत सारे कोई मंत्री था अंदर, अब इनको पता नहीं मंत्री है नहीं है। सीधा अंदर चला गया, बड़ा ये बड़ी इमारत थी उसके अंदर भी चला गया, और बहुत लोग बैठे थे इधर उधर, वो मंत्री के सहायक लोग बैठे थे, बहुत लोग लाइन में बैठे थे मंत्री को मिलने के लिए। ये अंदर गया, दरवाजा बना, खोला दरवाजा, अंदर चला गया, पीछे है बोल रहे ऐसे हाथ किया। उन्होंने सोचा बड़ा आदमी होगा, नहीं तो किसका साहस होगा ऐसे हाथ दिखा के जाना। तो अंदर चला गया और देखा कि मंत्री है, अभी तक उनको पता नहीं कि मंत्री है, बैठा तो कोई बड़ा आदमी है। तो गया अंदर सीधा, तो मंत्री बड़े मीटिंग में बैठा था, हैं, उसने पूछा एक कौन है क्या चाहिए, तो तब किसी ने पता नहीं मंत्री है, पीछे वो भाग के आया। हाँ मंत्री है तो क्या हुआ, हाँ मुझे कृष्ण का उपदेश देना है उनको, ये लीजिए आप मंत्री है ना, आपको पढ़ना चाहिए कृष्ण का उपदेश, पढ़ो। तो मंत्री को किसी ने ऐसे डांटा नहीं था पहले, लेकिन उसकी शुद्धता मंत्री ने देखी, देखा कि ये जरा साफ हृदय का है, निडर है बिल्कुल। वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा, बड़े सम्मान से वो भगवद गीता लिया, उसको थोड़ा दक्षिणा भी दे दिया। देखो जी, तीव्र इच्छा होती है कि हमें जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमें कृष्ण का उपदेश देना है, किसको, हरेक को देना है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा आदमी है तो नहीं देंगे, बहुत छोटा आदमी है तो नहीं देंगे, सभी को देना है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पीड़ा ग्रस्त हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम में, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चार प्रकार के क्लेशों से सभी लोग ग्रस्त हैं, हर एक व्यक्ति दुखी है, इसलिए कृष्ण उपदेश को स्वीकार करने के लिए हर एक व्यक्ति योग्य है, इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। जहां भी हमें अवसर मिले, यदि कोई व्यक्ति हमारी बात सुनने के लिए तैयार है तो कृष्ण उपदेश दे देना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, नहीं किसी के साथ, हाँ प्रवचन की शुरुआत होने वाली थी कि उनके एक शिष्य की पुत्री थी जो केवल 5 साल की थी। तो लोग इकट्ठे हो गए थे, बैठे थे, तो वो बच्ची जो है वो सब जगह जाके लोगों के कंधे पे ऐसे हाथ करके उनके कहती थी, आपको पता है श्री कृष्ण परम सत्य है। तो लोग बहुत प्रभावित हो गए ये बच्ची आके उन, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला देखो ये भी प्रचार कर रही है। उसको ज्यादा दर्शन नहीं मालूम, इतना मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान है, इतना जाके सबको बोल रही है। तो सब लोग ने सुना, अच्छा ये बोल रही है तो होगा फिर। तो इस तरह से आंदोलन को फैलाने की जब बात है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, केवल हमें क्या करना है, कृष्ण का नाम लेना है। और प्रभुपाद जी हम बोल रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं, यदि वह कुछ पढ़ना जानता है, नहीं जानता है फिर भी ये आंदोलन में शामिल हो सकता है। वो बच्ची कहां जानती थी पढ़ना। तो यहां कह रहे हैं कि नहीं जाने तो भी ठीक है, आप इस आंदोलन में शामिल हो सकते हो, और थोड़ा पढ़ना भी जानते हो तो भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, और जो पढ़े हो जो सुने हो दूसरों को जाके बताओ। बस ये हमारा आंदोलन है, इसी तरह से हम इस आंदोलन के प्रति समर्पित हो सकते हैं, जब हम भक्तों के बीच में आके सुनेंगे और फिर उसको जाके दोहराएंगे। ये हमारा समर्पण है, इस भाव को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मिल गया अभी हम संतुष्ट है, हम और हमारा संसार और हम यहाँ रहेंगे, नहीं। हमें चिंतित होना है सारे दुनिया के लोगों के लिए जो इतने दुखी हैं, कृष्ण भक्ति विहीन जीवन बिता रहे हैं। तो उन तक हमें श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश पहुंचाना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद जी विदेशों में गए तो अलग अलग शहरों में वहां के पत्रकार उनको आके पूछते थे कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो एक बार सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ पे आपसे कुछ पैसे लेने नहीं आया, मैं आपका शोषण करने नहीं आया, मैं आपसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आया, फिर आप क्यों आए हो। मैं आपको देने के लिए आया हूं। क्या देने आए हो? सबसे उदात्त और उत्कृष्ट वस्तु आपको देने के लिए आया हूं, ये श्री कृष्ण भावनामृत। अन्यथा मुझे और कोई दिलचस्पी नहीं है अमेरिका आने में, मैं पर्यटक की तरह नहीं आया यहां पे। दूसरी जगह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में, बर्कली यूनिवर्सिटी में, जब प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो वहां एक भारतीय लड़का था, वहां छात्र था वो। तो प्रवचन के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, ये हरे कृष्ण आंदोलन से क्या फायदा होगा, हमें चाहिए तंत्र ज्ञान, प्रौद्योगिकी हमें चाहिए, टेक्नोलॉजी, तब कुछ संसार का भला होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम यहां ये तंत्र ज्ञान की भीख मांगने आए हो, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया, मैं यहां देने के लिए आया हूं। और क्या देने के लिए आया हूं? सबसे मधुर चीज, सबसे सुंदर वस्तु यहां देने के लिए आया हूं। और एक बार ऐसे ही किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो उस समय प्रभुपाद ने ऐसे ही एक जवाब दिया, और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया कृष्ण से प्रेम करे, कृष्ण भावना भावित बने, इसलिए मैं यहां आया हूं, कृष्ण के प्रेम को बांटने के लिए आया हूं। यही हमारा आंदोलन है, और हमारे आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे कई बार प्रभुपाद जी ने उन्हीं ऐसे ही बातों को दोहराया, और उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था जब पहली बार मैंने उनसे उनका दर्शन किया था कि तुम एक बहुत ही शिक्षित नवयुवक हो और तुम्हें जाके विदेशों में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को फैलाना चाहिए, और इन उपदेशों को मैंने कभी भूला नहीं। और अब जब मुझे अवसर मिला बुढ़ापे में, तब मैं बहुत जवान था, अब बुढ़ापे में मुझे यह अवसर मिला है तो मैं अब देश विदेश में सब जगह घूम रहा हूं इसको फैलाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने अपने एक तात्पर्य में कहा कि दुनिया में इतने खून खराबा हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में भाईचारे की भावना से नहीं रह पा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, ये क्यों है? क्योंकि हम ज्यादा भगवान को भूल चुके हैं। यदि हम श्रीमद् भागवत को, भगवद गीता को अच्छी तरह से सुने, पढ़ें और अपने जीवन में उतारें तो लोगों के हृदय में फिर से वो प्रेम जागृत हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने ही देश भारतवर्ष की टीका की कि भारतवर्ष की ये सबसे बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? कि भारतवर्ष ने श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार सारे विश्व में नहीं किया है, इसलिए आजकल सारे विश्व में झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन केवल बाहर की बात नहीं, भारतवर्ष की ये और भी बड़ी गलती है कि प्रचार की बात तो भूल जाइए, भारत के अंदर भी लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कुछ भौतिक प्रगति हो, खूब पैसे कमाएं, हम खूब प्रसिद्ध हो जाएं। तो प्रभुपाद जी इस बात को देख के बहुत दुखी हो जाते थे। इसलिए हमें चाहिए, यदि हम वास्तव में इस आंदोलन के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो आप में से जो विदेश में जाते हैं या तो वहां भी प्रचार अवश्य कीजिए, परंतु भारत में भी बहुत आवश्यकता है। यह लोग इतने भौतिकतावादी बन गए हैं, इतने भोगवादी बन गए हैं, नास्तिकवाद भी चल रहा है, इसलिए भारत में भी खूब प्रचार की आवश्यकता है। इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को फैलाने की आवश्यकता है, लोगों में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम फैलाने की आवश्यकता है। और जब कृष्ण प्रेम लोगों के हृदय में आ जाएगा तो आपस में सब लोग प्रेम से रहेंगे। तो ये हमारा आंदोलन है और इस आंदोलन के प्रति ऐसे समर्पण हमारा होना चाहिए। परंतु इस प्रचार प्रसार के कार्य के लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति मिलती है भक्तों के संग में। ऐसे जब हम समय समय पर एकत्र होकर बैठेंगे तब और सुनेंगे कृष्ण कथा, बोलेंगे कृष्ण नाम, तब वो आध्यात्मिक बल हमें मिलेगा, फिर हम सब जगह जाके कृष्ण का उपदेश हम दे पाएंगे। तो आप सब इसी तरह से अधिक समर्पित होंगे इस कृष्ण भक्ति के आंदोलन से। तो केवल निगड़ी, पिंपरी, चिंचवाड़ और क्या है वो अकुर्डी इत्यादि नहीं, जहां हो सके आपको फैलाना है, लेकिन शुरुआत यहां से कर सकते हैं। कोई बचना नहीं चाहिए इस आनंद से, किसी को दुखी रहने नहीं देना है। एक भी दुखी व्यक्ति को अपना पकड़ लो, उनको सुखी करो, उनको आनंद दो। कैसे दोगे? कृष्ण नाम देके, कृष्ण उपदेश देके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप वेला है था? तो अभी प्रश्न है तो आपके पूछ सकते हैं आप, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अवश्य पूछ सकते हैं। तो आप सब क्रांतिकारी बनोगे ना? तलवार कहाँ है आपकी? आपकी माँ है ना तलवार? देखो गले में लटकी है, देखो आपके गले में है, दिखाइए ऊपर करके। हाँ वो देखिए, तलवार आपकी है। हरि नाम, ये हमारा तलवार है। हाँ कोई प्रश्न है आपके? कहाँ से आवाज आ रहा? सबको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, नहीं हमें करना चाहिए। ये पथ स्वेच्छा से होना चाहिए। अपनी इच्छा से जो स्वीकार करेगा वो स्वीकार करेगा। हम किसी के दिमाग में बंदूक लग के नहीं हरे कृष्ण जप करो, हाँ ऐसे नहीं कहते। हाथ जोड़ के कहते हैं आप कृष्ण का नाम लीजिए, देखिए कितनी सुंदर, कितना सुंदर संदेश है ये। उनको जचा, उनको अच्छा लगा तो और सुनना चाहेंगे, नहीं लगा तो थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। और जो लोग ज्यादा तर्क करते हैं ना, उनके लिए भी प्रसाद ही उपाय है। अपने साथ जब प्रचार करने जाओगे ना, प्रसाद लेके जाओ। तो जब वो ज्यादा बात करेगा, अनाप शनाप कुछ बोलेगा ना, इतना प्रसाद खिला दो कि मुंह भर जाएगा, बोल नहीं पाएगा। फिर वो अपराध नहीं करेगा भगवान के प्रति, किसने देखा है भगवान, क्यों कृष्ण ऐसे, उन्हें बोलेगा। मुंह में प्रसाद इतना स्वादिष्ट है वो सब भूल जाएगा, और उसका शुद्धिकरण भी होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है या फिर कीर्तन करें? हाँ प्रश्न इधर भी है, माइक है क्या? हाँ वहां पे माइक दीजिए। उनकी जो रुचि है वो हो सकता है शुरुआत में जागृत हो जाए। जैसे एक आग को हमें प्रज्वलित करना है तो पहले चिंगारी होती, चिंगारियां थोड़ी होती तो क्या करते हैं, हवा देते हैं ना, हवा देने से वो चिंगारी और बढ़ जाती है, आग बढ़ने लगती है। उसी तरह से थोड़े कुछ रुचि उन्होंने दिखाई है, आए हैं वो कुछ प्रवचन के लिए, कुछ कोर्स के लिए आए हैं, तब हमें थोड़ी हवा देनी चाहिए। कैसे हवा देनी चाहिए? बीच बीच में उनसे बात करना, उनको बुलाना, कोई कार्यक्रम के लिए बुलाना, उनसे चर्चा करना, प्रसाद देना, जब भी उत्सव होते उन्हें बुलाना, तो ये भी बहुत आवश्यक है। इससे हवा चलता रहेगा, फिर वो चिंगारी भड़केगी और फिर प्रज्वलित अग्नि हो जाएगी। तो केवल जब प्रवचन होता है या कोर्स होता है, केवल वो महत्व का समय नहीं है, उसके बाद का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। संपर्क में रहना चाहिए। हाँ यदि कोई संपर्क में नहीं रहना चाहे, नहीं आना चाहे, तो जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई तैयार है सुनने के लिए, और कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके संपर्क में हमें रहना चाहिए। हाँ माइक है। आपके परिवार के सदस्य हैं इधर? उस हिसाब से मैं उत्तर दूंगा, हैं तो फिर बड़े संभाल के उत्तर दूंगा। नहीं देखिए, प्रभुपाद जी के परिवार में भी ऐसे हुआ ना, जब वो गृहस्थ जीवन में थे तो उनके बच्चे भी थे, पत्नी थी, रुचि नहीं थी उनको भक्ति में, पत्नी के मन में भी रुचि नहीं थी। बल्कि एक बार उन्होंने उनके जो ग्रंथ थे वो भी बेच दिए, तो उनको बड़ा दुख होता था, परंतु क्या करते, पत्नी है आखिर, तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए घर की शांति को तोड़ना नहीं चाहिए, घर के संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, घर में तनाव का वातावरण निर्माण नहीं करना चाहिए। एक दूसरे देश में जब हम गए थे, वहाँ एक मुझे भक्त मिले थे। उनकी पत्नी शुरुआत में नई नई शादी होने के बाद आई, तो इंडिया से आई, भारत से आई। हालांकि भारत से आई थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में। वो लड़का भक्त था, तो इसने मंदिर में ले जाना शुरू कर दिया, तो लड़की को अच्छा लगा, पत्नी को। लेकिन बाद में इसने बहुत जोर करना शुरू कर दिया, सोलह माला करो, ये ने बहुत जोर किया, इतना जोर किया कि पत्नी ने कहा मैं माला बिल्कुल नहीं करूंगी आज से। अच्छा, पत्नी को ठान लेती है तो पति क्या कर सकता है, जानते हैं। तो ठान लिया, नहीं करना है मुझे, जब मैं मंदिर भी नहीं आऊंगी। तो इसने गुस्सा होना शुरू कर दिया, फिर घर में तनाव हो गया। कई साल ऐसे बीत गए, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने लगे आए, तब वो अचानक फिर मुझे मिला। मैं उस देश में गया, वो मुझे मिला, मुझे पूछा, तो मैंने सारी बात सुन ली। और मैंने कहा कि उन्हें, वो अभी भी उनको उपदेश देने का कोशिश, उपदेश देने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा उनसे एक शब्द मत कहो कृष्ण के बारे में, क्यों, जानते हो कि वो सुनना नहीं चाहते, तो क्यों जबरदस्ती करते हो। लेकिन वो घर में ऐसे करते हैं, बोलने के बाद भी करते हैं ना, तो फिर बोलने से क्या फायदा। अपना काम करो, अपनी साधना करो, उनको जो करना है करने दो। तुमने प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया, और इतना प्रयास किया कि देखो परिणाम क्या हो गया। तो समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक ठाक उनसे प्रेम के साथ बात करो सबके साथ। ऐसा नहीं कि इतना कड़क बन जाओ कि बस फिर वो दूर चले जाए। आखिर वो है, अपने बच्चे हैं, पत्नी है, ठीक से बात करो घर में। तो फिर काफी समझाना पड़ा, समझाया। फिर एक हफ्ते के बाद आया, अरे चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ, अभी पत्नी ठीक से बात करती है मेरे साथ। अरे तुम भी ठीक से बात करोगे तब वो बात करेगी ना, तुम एकदम अड़ के बात करोगे तो फिर वो भी नहीं करेगी। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से बर्ताव करो। यदि हम उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो अपराध करेंगे ज्यादा, कृष्ण की निंदा करेंगे, भक्तों की निंदा करेंगे, भक्ति की निंदा करेंगे, तो उनसे अपराध हो जाएगा और आप भी अपराध में भागीदार हो जाओगे, क्योंकि आप ठीक तरह से उनको, उनके साथ बर्ताव नहीं कर रहे थे। तो उनको संभाल के रखो अच्छी तरह से। भगवान की योजना से ही ऐसे सदस्य मिले हैं परिवार के, तो संभाल के चलो उनको। एक न एक दिन वो आएंगे, जब ठीक से उनके साथ आपका बर्ताव होगा तो वो भी अपने आप धीरे 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 से आएंगे। और अंत तक भी नहीं आए तो प्रार्थना तो कर सकते हो, इतना हरे कृष्ण महामंत्र सुन सुनकर उनका हृदय में शुद्धिकरण तो हुआ ही होगा कुछ तो, ठीक है। घर में बिना वजह झगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर अपना जब भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धिमान होना चाहिए हर एक व्यक्ति को, समझदार होना चाहिए कि कैसे संभालना है। कभी कभी पति के साथ ऐसा होता है, कभी कभी पत्नी के साथ ऐसा होता है, कभी कभी बच्चों के साथ होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अज्ञात पाप, अनजाने में जब हम पाप करते हैं तो क्यों होते हैं हमसे, क्योंकि हमारे पूर्वकृत कर्म ही ऐसे हैं कि ऐसे हमारी भाग्य हो जाता है, ऐसे हमारा भाग्य हो जाता है। हमने कोई ऐसे पाप किए होंगे जिसकी वजह से हमें ऐसे भी कोई कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा है प्रकृति के नियमों के द्वारा, जिससे और पाप का फल हमें भुगतना पड़े। इसलिए अनजाने में जो पाप होते हैं हम तो उनको रोक नहीं सकते, हम सड़क में फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे न हो, फिर भी न जानते हुए कुछ हो रहा हो तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कम से कम जानते हुए कोई पाप नहीं करना चाहिए, इतना तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए। इसमें इतना करें और भगवान श्री कृष्ण से के चरणों में हम समर्पित हो जाएं, तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो अनजाने में ऐसे पाप हो भी गया, जानबूझकर नहीं, अनजाने में यदि ऐसे पाप हो भी गया और हम कृष्ण के शरण में हैं, नाम जप नाम कीर्तन सब कर रहे हैं, तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या दर्शन होंगे क्या, कब? दो तीन, तो एक प्रश्न और है। ठीक,
एक प्रश्न और ऐसा है कि इस जगत के लोगों को ऐसे लगता ही नहीं कि हम दुखी हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे प्रचार करेंगे?
हाँ, ये होता है, ऐसे लोगों को प्रचार करना बहुत मुश्किल है। जैसे सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो जो आदमी मानता ही नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख है, तो फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकोगे। प्रार्थना कर सकते हैं, यदि वो सुनने के लिए तैयार है तो ठीक है, समझाओ उसको कि कैसे वो दुखी है, दुख का मतलब क्या है, सुख का मतलब क्या है, या इस समय कम से कम उसे यदि थोड़ी दुखों से राहत है, लेकिन आगे चल के होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, इसके पहले जन्म भी हुआ था, जन्म के समय क्या सभी जन्म के बाद सुखी होते हैं, बच्चे का जन्म होता है तब सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जन्म के समय क्या होता है, सब रोते हैं ना, बच्चा भी रोता है, माँ भी रोती है, सब लोग तनाव में रहते हैं, ये कष्ट तो है ही ना जीवन में। और उनको कहिए आप दुखी नहीं हैं, बस थोड़े समय के रुकिए, हो जाएंगे, मोड़ पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है आपके, कतार मार के दुख खड़े हैं आपके, चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन दर्शन उनको सुनाइए, फिलॉसफी सुनाइए, और सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रसाद दे दीजिए, थोड़ा कीर्तन में बुलाइए। ठीक है, हरे कृष्णा।
हाँ जी,
कहाँ से आवाज आ रही, पहले हम सुने। हाँ, अच्छा, यहाँ से। हरे कृष्ण
जी। उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं हर एक जीव भक्ति में, कृष्ण भक्ति में ही लगा हुआ है, तो उनकी नजर से हम कैसे समझ सकते हैं कि हर एक जीव कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है?
जो उत्तम स्तर पे भक्त होते हैं वो ऐसा देखते हैं, हम नहीं देखते।
समझ कैसे सकते हैं इस चीज़ को?
क्योंकि जितनी ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें अंदर से ऐसे लगता है कि मैं भक्त नहीं हूं, मुझे कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। और वैसे देखा जाए तो हर एक जीव भगवान की ही सेवा कर रहा है। भक्त हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और जो अभक्त हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वो भगवान की माया शक्ति की सेवा करते हैं, बस वही बात। और अप्रत्यक्ष रूप से करने से माया के फिर डांट भी मिलती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो भी हिलना पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति भगवान की ही सेवा कर रहा है, भगवान के ही अधीन है। प्रभुपाद जी कहा करते थे हर एक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है, थोड़े लोग जानते हैं, थोड़े लोग नहीं जानते। जो अज्ञान में है वो नहीं जानते हैं कि वो भी कृष्ण को ही खोज रहे हैं, परंतु कैसे जान सकते हैं कि वो भी कृष्ण को खोज रहे हैं? क्योंकि वो सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और आनंद केवल कृष्ण में है, और कृष्ण के अतिरिक्त पैसे में नहीं, क्षमा कीजिए, किसी में भी नहीं है आनंद। तो इसलिए एक दार्शनिक दृष्टि से शुद्ध भक्त की दृष्टि ऐसे होती है, वो देखता कि हरे कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि विश्वम पूर्णम सुखायते, ये पूर्ण विश्व जो है ये सुख से भरा हुआ है, और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। या तो कृष्ण सही बोल रहे हैं या वो प्रबोधानंद सरस्वती सही बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है, दोनों सही बोल रहे हैं कि एक कोई सही बोल रहे है? सुखालयम है कि दुखालयम है, ये दृष्टिकोण पर निर्भर होता है। हम सबके लिए दुखालयम है, जो द्वंद्वों में पड़े हुए हैं उनके लिए दुखालयम है, लेकिन जो द्वंद्वों के परे हो चुके हैं, कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं 24 घंटे, उनके लिए सुखालयम है। दुख का स्पर्श उनको नहीं करता, और जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख है तो केवल अन्यों के लिए जो संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नैवोद विजय पर दुरत्य य वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे नरसिंहदेव भगवान, मैं इस भयंकर संसार से बिल्कुल विचलित नहीं हूं, मुझे कोई डर नहीं है, ना मुझे कोई कष्ट है। नैवोद्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास, हालांकि ये संसार वैतरणी या नदी के समान है जिसको पार करना प्राय असंभव है, और मैं क्यों सुखी हूं इस दुखमय सागर में, त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरा चित्त मग्न है। किस चीज में मग्न है? आपके महिमा का गान में, आपके महिमा के गान में मेरा चित्त मग्न है। परंतु दुख एक ही है मेरे जीवन में, शोचे ततो विमुख चेतस, जो आपसे विमुख हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में दुख है। इंद्रियार्थ माया सुखाय, माया सुख के लिए ये लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। भरम उद्वहतो, और भारी भारी वजन उठाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं सुख की खोज में। विमूढ़ान, बड़े मूर्ख लोग हैं वो, तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए मैं दुखी हूं, अन्यथा मैं दुखालय, इसको दुखालय नहीं मानता, मैं सुखालय मानता। दृष्टिकोण है, जैसे हम जब सुखी होते हैं ना तो हर चीज बहुत अच्छे लगती है ना, पंछियां उड़ रही हैं, हरा भरा है, सब अच्छा लगता है, कविता भी हम लिखते हैं। लेकिन जब हमारा मन बिगड़ा हुआ होता है ना, सुंदर से सुंदर स्थान में भी जाइए अच्छा नहीं लगता है, सही है? सब मन की स्थिति पर निर्भर होता है। तो क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त का मन कृष्ण प्रेम से भरा हुआ होता है तो वो सब जगह प्रेम ही प्रेम देखता है। आत्मवान मन्यते जगत, जैसे मेरा मन है, मेरे मानसिक स्थिति का आरोप मैं दुनिया पर लगाता हूं। मेरे मन में यदि द्वेष है तो सबको मैं द्वेषी मानता हूं, सब लोग द्वेषी हैं। मेरे मन में यदि प्रेम है तो मैं मानता हूं सभी लोग प्रेमी हैं, ऐसे है ये, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जय।
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय गोविंद की जय श्री श्री गौरताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे।